दौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। अन्ताय मच्छहीनं। दशदशयचावधीरं पढ़मजिनं। वोच्छं नमिहूणन्तरणं। अनंतरुत्तुंगसन्नमय दुर्गेजम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षट्खंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीवस्था नामक चल रहा है, उसमें अपना विषय है अंतरानुगम। और अभी हम पृष्ठ संख्या 73 पर आ गए। 73 अभी हमारी इंद्रिय मार्गणा चल रही थी ना, पंचेंद्रियों में हम देख रहे थे। यहाँ अभी हम संहिता संयुक्तों का उत्कृष्ट अंतर देखने जा रहे हैं। चार गुण स्थानों का हमने देख लिया था, पढ़ेंगे नीचे का पैराग्राफ। संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एकेंद्रिय की स्थिति को प्राप्त एक जीव, वो जीव बराबर करना, ये सब जिसको इकार है ना, वो आए नहीं है इस लाइन में। एकेंद्रिय की स्थिति यानी अनंत काल या असंख्यात लोक ही हमने पहले देखा था। ऐसा जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को में उत्पन्न हुआ, वो संगी पंचेंद्रिय बराबर लिखना। छपा है क्या बराबर? आप कहाँ देख रहे हैं? नीचे का पैराग्राफ 73 पेज पर। नीचे का लास्ट पैराग्राफ। एकेंद्रिय की स्थिति को प्राप्त एक जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अंतर्मूर्त से। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व को तथा संयम को युगपत प्राप्त हुआ। तीन पक्ष ने 1.5 महीना, 15 दिन का एक पक्ष होता है ना, ये कहां से कैसे लिया? यानी हम हमेशा 2 महीने की बात देखते हैं, यहां 1.5 महीने में, यानी जैसे हमने 9 महीने के बदले 7 महीने में बच्चे को देखते, वैसे यहाँ होना चाहिए कुछ। यानी 45 और ये 3, 48 दिन हो गए। और अंतर्मूर्त से और वो भी प्रथम ऑप्शन प्राप्त किया, यानी गर्भज ही है ना वो तो। वो तीरंज ही लिया है, तीन पक्ष, 3 दिन और अंतर्मुख। अंतर्मुहूर्त में प्रथम ऑप्शन प्राप्त किया। हाँ, आपका कहना देशना लब्धि कैसे हुए, कैसे क्या मिला, तथा संयमा संयम को युगपत प्राप्त हुआ। प्रथमोपशम समेक के काल में छह अवलिय अवशेष रहने पर शासादन गुणस्थान को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हुआ। मिथ्यात्व को जाकर अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंतिम पंचेंद्रिय भव में सम्यक को ग्रहण कर, अभी पंचेंद्रिय का अंतिम भव इन्हें हमने यो देखा था, कितने देखे थे याद है ना, हजार सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक को, यानी यहाँ पर भी पहले प्रथम उपशम होगा, फिर उसमें से वेदक सम्यक होगा, उसके बाद चायिक होगा, दर्शन मुनि का क्षय कर और संसार के अंतर्मूल प्रमाण अवशेष रहने पर संयम को प्राप्त हुआ। पश्चात अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें अपूर्व कर्णादि संबंधी ऊपर के छह मुहूर्तों को मिलाकर तीन पक्ष तीन दिवस और बारह अंतर मुहूर्तों से कम अपनी स्थिति प्रमाण संहिता संयतों का उत्कृष्ट अंतर है। ये संहिता संयत के अंतर में क्या लिया, पहले भाव में उन्होंने संहिता संयत प्राप्त किया प्रथम उपशम सम्यक सहित, फिर मिथ्यात्व में गया और लगातार मिथ्यात्व में रहा और अंत में उसको तो क्षपणा करके मोक्ष भेज दिया। तो प्रश्नकार पूछता है उक्त जीवों को एकेंद्रिय में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, जैसे चौथे वाले को एकेंद्रिय में भेजा था ना, वापस एकेंद्रिय में डायरेक्ट भेजा था, द्विंद्रिय आदि में भी नहीं भेजा था, क्योंकि पूरा एकेंद्रिय का काल पंचेंद्रिय का पूरा काल वो लगातार पंचेंद्रिय में रहा है तो वहां से एकेंद्रिय में जाता है। तो यहाँ यही प्रश्न है कि एकेंद्रिय में भी भेज सकते थे ना, संहिता संयुक्त के बाद एकेंद्रिय में भी भेज सकते थे, तो यहाँ कहते एकेंद्रिय में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, कहते संहिता संयुक्त का अंतर लब्ध होने के पश्चात ऊपर सिद्ध होने तक के काल से अंतर लब्ध करके उसको ऊपर भेज दिया, नीचे नहीं लाया। तो ऊपर गया ने क्या छठा सातवा हजारों बार किया, श्रेणी चढ़ी और मोक्ष चला गया। तो ये काल अगर वो एकेंद्रिय में जाता तो अर्थ क्या होगा, संहिता संयत वाला है, एकेंद्रिय में जाने के पहले अबद्धायु था और फिर नीचे आए मिथ्यात्व में, फिर आयु का बंद किया, फिर और अंतर्मूर्त रुकिया वगैरह, वो बड़ा काल हो जाता। ये पांचवें से आया हुआ है एकदम, तो एकेंद्रिय जैसे पर्याय कोई बांधने की बात नहीं होगी, संकलेश होते होते चला जाएगा पंचेंद्रिय के मार्ग में। नहीं नहीं नहीं, वो अंत में पंचेंद्रिय में से एकेंद्रिय में जा सकता था ना, पंचेंद्रिय का काल पूरा करने के बाद संहिता संयत के बाद मिथ्यात्व में ले जाकर, हाँ अंत में एकेंद्रिय में क्यों नहीं भेजा, ये प्रश्न है। देखो संहिता संयत की बात निकालो, उसके साथ कंपेयर करो, पेज नंबर 72 निकालना 72, असंयत का अंतर देखने के लिए पहले क्या किया था, देखो पूरा पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे। एकेंद्रिय की भव स्थिति को प्राप्त कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासिया व्यानवेंतर देवों में आयु बांधकर, वो सम्मूर्छन में इसलिए लिया कि अंतर्मूर्त में आयु बांधकर मरकर देव हो सकता है, फिर देव में जाने के बाद वो सब उसकी कंडीशन करके उसने उपशम समेत को प्राप्त किया और बाद में छह अवली शेष रहा, तब शासादन गुणस्थान को गया तो चौथे का अंतर चालू हो गया। अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंत में उपशम समेत को प्राप्त किया अंतिम भूमि, पुनः शासादन को गया और वहां पर अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक रह कर स्थावर कायु में उत्पन्न हुआ। अभी उसने मिथ्यात्व में आयु बांधी थी किसकी, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति वगैरह वगैरह, तो उसके बाद तो तिर्यंच आयु बांधने के बाद भी वो तो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं, यानी चौथा गुणस्थान हो सकता है पर पांचवा नहीं हो सकता था, इसलिए पांचवे वाले को बाद में आयु बांधनी पड़ी। ख्याल में आई बात? तो इसके बाद इसको कहाँ भेज दिया, देखो स्थावर कायिकों में उत्पन्न हुआ। चौथे वाले का पंचम जी का काल समाप्त होने पर उसको स्थावर कायिक में भेज दिया। ये प्रश्नकार यहाँ पूछता है ऐसे उसको क्यों नहीं किया, प्रश्न समझ में आए? अभी आते 74 पेज पर, कहाँ पर असंयत में आयु तो मिथ्या तो में ही बांधी ना, यानी आयु बांधने के बाद सम्यक तो प्राप्त किया था उसने प्रथम अवसर। ख्याल में है? अब यहाँ प्रश्न संयता संयत के बारे में प्रश्न था कि उसने पंचेंद्रिय की स्थिति में शुरुआत में एकेंद्रिय में लंबा काल बिताकर आया है, पंचेंद्रिय में आया है, अभी पंचेंद्रिय में आए तो संगी पंचेंद्रिय तीरियन चलेना यहाँ पर, और उसमें गर्भकाल भी तीन पक्ष फिर तीन दिवस और अंतर्मुहूर्त ऐसा कुछ काल बताया वहां पर। उसके बाद उसने तो सम्यक तो प्राप्त किया, प्रथमोक्षम प्राप्त किया, उसके बाद पंचेंद्रिय की स्थिति तक रहा मिथ्यात्व में, संहिता संयत में से फिर मिथ्यात्व में आकर रहा, और फिर आठ वर्ष मनुष्यों के लिए लगते हैं, उसको अर्लीस्ट समय को प्राप्त कराना है, इसलिए तीरियंच में, हाँ नेचुरली देखो ना, पर तीन पक्ष में ही उन्होंने, नहीं तो वही तो हम दो महीने का तो देखते थे, पर ये हो सकता है ना कि प्री मैच्योर हो गई होगी, दो मास, डेढ़ मास यानी 48 दिन हो गए ना पूरे, तीन पक्ष तीन दिवस, हाँ संगीत तीरियंच। और फिर लास्ट में उसके बाद उसको संहिता संहित का अंतर करने के लिए मुनि होकर मोक्ष भी चला गया, इसलिए प्रश्न यहाँ था। जैसे चौथे में उसको मिथ्यात्व में लाकर फिर उसको एकेंद्र में भेजा, वैसे यहाँ क्यों नहीं किया, ये प्रश्न था। उसका समाधान फिर पढ़ते हैं कि एकेंद्र में क्यों नहीं उत्पन्न कराया। समाधान, संहिता संहित का अंतर लब्ध होने के पश्चात, अंतरलब्ध हुए ने संहिता से प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या गिनना, पांचवे का अंतर्मूल, छठे सातवें का अंतर्मूल, फिर क्षपणा वो सब ऊपर क्षपणा की वो सब सब समझना। तो अंतरलब्ध होने के पश्चात ऊपर सिद्ध होने तक के काल से मिथ्यात्व को जाकर एकेंद्रियों में आयु को बांध कर उनमें उत्पन्न होने का काल संख्यात गुणा है, वो भी अंतर्मूर्त है परंतु वो संख्यात गुना बड़ा है, क्योंकि यहाँ बढ़ती हुई विशुद्धि से सारे काम हो गए फटाफट, और वहां तो मिथ्या तो में आएगा, संकलेश की ओर बढ़ेगा, फिर एकेंद्र की आयु बांधेगा, आयु बांधने के बाद अंतर्मूर्त विश्राम करेगा फिर जाएगा, इसलिए एकेंद्र में नहीं उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरीतन गुणस्थानवर्ती जीवों के भी यही कारण कहना चाहिए, यानी प्रमत्तादि के लिए भी बाद में वो बताएंगे अंतर कैसे घटित करना, पहले भव में किया फिर एक यानी फिर मिथ्यात्व में गए, पंचेंद्रिय का काल बिताया लास्ट में, फिर उसके बाद अंतर करके उसको श्रेणी में ऊपर भेज दिया, इस ऊपर भेज दिया। मिथ्यात्व में आकर एकेंद्रिय में जाने के लिए अधिक काल लगता, ये सातवें गुणस्थान ओघ में देखा था हम, यहाँ तो पंचेंद्री के मार्ग में है। देखो कारण ये है, संहिता संयत पहली चौथी की बात करते हैं, पंचेंद्रिय के यानी पंचेंद्रिय की इतनी स्थिति है, स्टार्टिंग में एक बार चौथा गुणस्थान करके मिथ्यात्व में आया, थ्रू आउट मिथ्यात्व में रहा, मिथ्यात्व में ही आयु बांधी, तीरियन से आयु बांधी, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, और फिर सासाधन में जाकर वो एक योग्य काल में एकेंद्रिय में चला गया, ये वहां हुआ। अब पांचवे गुणस्थान के लिए, स्टार्टिंग में प्रथम ऑप्शन से पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में आया, थ्रू आउट रहा, अब यह पहले तिर्यंचय बांधते तो पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता था, ख्याल में है ना? तिर्यंचय बांधने वाले को पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता, तो पहले आयु नहीं बांध सकता, तो पहले पांचवें गुणस्थान में आया। पांचवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त रहकर यदि वो मिथ्यात्व में जाता, आयु बांधता, फिर रुकता और एकेंद्रीय में जाता तो अंतर्मूर्त बड़ा हो जाता। उसके बदले पांचवें में फिर उसने वो मुनि हो गया, क्षय किया, श्रेणी चढ़ी, वो सबका काल मिलकर छोटा है, इसलिए उसको एकेंद्रीय में नहीं भेजकर ये दर्शनमुखी क्षपणा कर, यानी उसके लिए हर एक के लिए अंतर्मूर्त अलग अलग, फिर भी वो काल छोटा है, क्योंकि प्रथमोक्षम प्राप्त किया, उसके बाद वो वेदक हुआ, उसके बाद क्षपणा की, फिर छठे सातवें में गया, यानी सातवा छठवा करता रहा। आपको मिला क्या कुछ? किसमें देखा? तिर्यंचयों का गर्भकाल देखा? नहीं तो हर समय हर बार वो दो महीने की बात आई थी, यहाँ यही वो डेढ़ महीने की 48 दिन की बात है। ये कैसे होगा फिर? असंगी में जाएगा तो फिर कैसे होगा? पांचवा गुणस्थान कैसा होगा उस? चौथे के लिए देव में भेजा था, पांचवे के लिए मनुष्य तिर्यंच में रखना है, और मनुष्य में लेते तो 9 महीने क्या 7 महीने भी ले लो तो फिर 8 साल तक रुकना पड़ता ना। अभी आगे बढ़ते हैं। 74 प्रश्न नीचे का पैराग्राफ, प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एकेंद्रिय स्थिति को प्राप्त एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अभी छठे के लिए उसको मनुष्यों में उत्पन्न कराना है, गर्भादि 8 वर्षों से, यानी गर्भ से लेकर 8 वर्ष गिनना, वो उसने 7 महीना रहा क्या क्या उससे कुछ मतलब नहीं। उपशम सम्यक तो और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात प्रमत्त संयत हुआ, पीछे नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी वो जो जितना ये यथायोग्य हजारों बार छठा सातवा हो गया उसका, फिर नीचे आया, मिथ्यात्व में चला गया। अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके, क्योंकि वो तो पंचेंद्रियों में लगातार रखना है इतने लंबे काल तक, हजार सागर तो सम्यक्त की बात तो नहीं होगी, तो लगातार मिथ्यात्व में रहा उसको। अंतिम भव में मनुष्य हुआ, यानी अभी उसका चरम शरीर लेना, यहाँ पर भी चरम शरीर ही होगा वो। दर्शन मुनि का क्षय कर, अभी ये सब बात नहीं थी कि वहां प्रथम मोक्षम प्राप्त किया, फिर वेदक हुआ, फिर दशमुनि का क्षय किया, वो सब उसमें ले लेना, यानी वो चौथे पांचवे में ही लेना नीचे, क्योंकि छठे का अंतर बढ़ाना है ना, पहले ये सभी बातें करके वो छठे में भेजना उसको। अंतर्मूर्त काल के संसार के अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्त संयत होकर पुनः प्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त मिलाकर, जैसे उन्होंने पांचवें में गिनाए थे, देखो देखो पहले ये पूर्ण लेते फिर आप पांचवें की बात बताएं। अंतर्मूर्त से कम अपनी स्थिति प्रमाण प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ, ये पहले वाले भी लिए ना उसने, उपशम समय कर अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ 8 वर्षों के बाद उसका अंतर्मूर्त लिया, प्रमत्त में रहने का अंतर्मूर्त लिया एक, और जब दोबारा प्रमत्त को प्राप्त हुआ तो प्रमत्त रहने का अंतर्मूर्त लिया, फिर अप्रमत्त का अंतर्मूर्त लिया, वैसे एक एक का अंतर्मूर्त लिया, परंतु तो उसमें वो सारा हजारों बार वाला समझ लेना, एक एक बार करके मोक्ष नहीं जाएगा। और उसके बाद 6 अंतर्मूर्त लिए, यानी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वो सब, वो 6 अंतर्मूर्त लिए, 8 9 10 12 13 और 14 ये छह अंतर्गत, आठवें से लेकर चौदहवें तक के छह अंतर्गत। अभी आपका प्रश्न है संहिता संयत में कैसे हुआ। देखो संहिता संयत बात निकालो, लास्ट लाइन लेना अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके, अंतिम पंचेंद्रिय भाव में सम्यक्तों को ग्रहण किया यानी चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, फिर दर्शन मुनि का क्षय किया, पांचवें गुणस्थान अभी रह नहीं रहे उसको पांचवें में अंत में भेजेंगे, और संसार के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर सहिमा संयम को प्राप्त हुआ। अब सहिमा संयम में अंतर्मूर्त में रहेगा, बाद में अप्रमत्त होगा, फिर प्रमत्त होगा, फिर अप्रमत्त होगा, और बाद में अपूर्व कर्णादि छह गुणस्थानों में चला जाएगा। अब 75 पृष्ठ पर आते हैं। अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एकेंद्रिय की स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भादि 8 वर्षों से ऊपर उपशम सम्यक्त तथा अप्रमत्त गुणस्थान को युगपत प्राप्त हुआ, इस प्रकार इस गुणस्थान का आरंभ दिखाई दिया यानी उसमें अंतर्मूत रहा, फिर छठे में गया, अंतर चालू हो गया उसका तभी नहीं अंतर, बहुत बार छठा सातवां करेगा जब लास्ट में वो छठे में आएगा फिर नीचे जाएगा तब से अंतर लेना। पश्चात अंतर को प्राप्त हो अंतिम पंचेंद्रिय भाव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, दर्शन मुनि का क्षय कर यानी वो समय दृष्टि हुआ, दर्शन मुनि का क्षय किया, वो सब उसमें ले लेना। अभी मुनि नहीं हुआ ये, उसके पहले चौथे पांचवें में कहीं पर भी रखो। संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, उसका अंतर समाप्त हुआ, पश्चात प्रमत्त अप्रमत्त हुआ, इनमें ऊपर के छह अंतर्मूर्त मिलाने पर 8 वर्ष और 10 अंतर्मूर्तों से कम पंचेंद्रिय की स्थिति अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। आठवां नौवां दसवां 11 12 13 14 8 9 10 11 ने 8 9 10 12 13 14 छह हो गए। हाँ वही तो है ना, वो कब से वही कह रहे हैं कि उसको नीचे क्यों नहीं लाया, तो ये काल छोटा है, मिथ्यात्व में जाकर आयु बांधकर नीचे एकेंद्रियादि में जाता तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, इससे संख्यात गुण अंतर्मूर्त हो जाता है। आगे का सूत्र, चदुन्नम उवसाम गाणम नाना जीवम पड़ी ओघम, पड़ी क्यों लिखा, पड़ुच्च क्यों नहीं, चार उपशामकों का अंतर नाना जीवन की अपेक्षा ओघ के समान है। जरा मैं पीछे देखती हूँ पड़ी बराबर लिखा है कि नहीं, नाना जीवम पड़ी ओघम। ये पढ़ा हमने ओघ के समान है, ओघ के समान है याद है क्या, उपशामकों का अंतर कितना होता है एक समय से लेकर अधिक से अधिक वर्ष पृथक, क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व, इस प्रकार ओग से इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रियों के तो ये प्राप्त होता है, इसलिए ओग में कहो पंचेंद्रिकों में बात वही होगी नाना जीवन की अपेक्षा। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतो मुहूर्तम, चारों उपशापकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अपूर्व कर्ण संयत आदि तीनों उपशामकों का ऊपर चढ़कर नीचे उतरने पर जघन्य अंतर होता है। यानी आठवें का अंतर कैसे, आठवें से नौवें में गया तो अंतर चालू हो गया, फिर नौ दस ग्यारह, फिर दस नौ करके आठवें में आया, अंतर समाप्त हुआ। तो नौ दस ग्यारह दस नौ, पांच अंतर्मूर्त का मिलकर जो अंतर्मूर्त होगा वो उसका आठवें का अंतर। नौवे के अंतर के लिए क्या करना, दस ग्यारह फिर दस, ये नौवे का अंतर। दसवें का अंतर केवल ग्यारहवा गुणस्थ था, वो दसवें वापस आएगा। ये इसके लिए आठ नौ और दस के लिए। ग्यारह के लिए क्या होगा, ग्यारह से छूटा तो पूरा नीचे आया, फिर दोबारा श्रेणी मांडी ऐसा वो फिर पहुंच गया, उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। किंतु उपशांत कषाय का नीचे उतरकर पुनः सर्व जघन्य काल से उपशांत कषाय को प्राप्त होने पर जघन्य अंतर होता है। यानी वो तो उसी करण परिणाम में फिर दोबारा नहीं चढ़ेगा, नीचे आया छठा सातवां हजारों बार होगा, फिर दोबारा तीन करण परिणाम करके ऊपर चढ़ेगा, फिर भी वो अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर होता है। अभी एक जीव की अपेक्षा जघन्य बताया, अभी उत्कृष्ट बताना है। उपकसेन सागरोम सहस्राणी पूर्व कोड़ी पुधत्तेन अभियाणी सागरोम सदपुदत्तम। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त दो ऑप्शन है, इसलिए पंचेंद्रियों की पंचेंद्रिय कहने से सामान्य संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त। पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने से पंचेंद्रिय में संगी और असंगी के पर्याप्त भाव केवल लेना है, तो उनकी स्थिति जुदी जुदी है, इसलिए दो अलग अलग ऑप्शन बताए। चार उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर, ये पंचेंद्रियों में बात चल रही है। ओग में तो हम अर्धपुद्गल लगाएंगे कुछ कम, यहाँ पंचेंद्रियों की स्थिति देखना है, उसके स्टार्टिंग में और लास्ट में इस तरह से लेना उसका। पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक सागरोपम सहस्र, यानी हजार सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक्त्व, और सागरोपम शत पृथक्त्व यानी सौ सागर पृथक, पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए। अब उसको समझा रहे हैं। एकेंद्रिय स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, ये बार बार ये कंडीशन डाल रहे, क्योंकि पंचेंद्रिय में लगातार वही जीव रहेगा जो एकेंद्रिय में लगातार लंबा काल बीता कर आया है। गर्भादि आठ वर्षों से विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त्व को और अप्रमत्त गुणस्थान को युगपत प्राप्त होता हुआ अंतर्मूर से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। मैंने पहली बार प्रथम उपशम किया क्योंकि लंबे काल घूम के आया है, प्रथम उपशम किया, उसके बाद वेदक हुआ अंतर्मूर्त में, वेदक में अंतर्मूर्त रहेगा। बाद में अनंतानुबंधी कषाय का कषाय चतुष्क का विसंयोजन करके, क्योंकि द्वितीय उपशम करने के लिए पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करना पड़ता है, वो तीन करण फिर मांडे, फिर विश्राम ले, फिर दर्शन मुनि का उपशम कर, यानी ये द्वितीय उपशम किया उसने, क्योंकि श्रेणी तो वेदक के साथ नहीं चढ़ी जाती है। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी परावर्तन सहस्रों को करके, यानी हजारों बार छठा सातवां करके, द्वितीय उपशम करने के बाद हजारों बार किया ना, द्वितीय उपशम करते ऊपर नहीं चढ़ाया। फिर उपशम श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत्त संयत हुआ, उसका अर्थ है यहाँ अधकरण, इस यहाँ के सातवें में अधकरण होकर आठवें में अपूर्वकरण होता है। पश्चात अपूर्वकरण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत कषाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय, फिर अनिवृत्तिकरण संयत, फिर अपूर्वकरण संयत हो नीचे उतरकर, नीचे उतरकर ने अभी फिर अपूर्वकरण में से तो सातवें में आएगा, सातवें से छठे में आएगा, और वहां भी छठा सातवां हजारों बार होगा, और बाद में कालांतर में मिथ्यात्व में चला गया। नीचे उतरकर पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, जरूरी नहीं है एकाध दो चार भाव सम्यक तो में रहकर भी जा सकता है ना, पंचेंद्रिय में रखना है उसको, ख्याल में आए ना बात। मान लेते हैं ना कि देव में भी गया वो, वहां की आयु बिता कर भी आया, पंचेंद्रिय का पंचेंद्रिय रहा, तीरियंश में भी कभी अभी मान लेते देव में जाने के बाद मिथ्या तो में गया, फिर कभी तीरियंश हुआ कभी मनुष्य हुआ, पंचेंद्रिय में रहा, मिथ्या तो में जाने के बाद तो नरक का भी भोग करके आ सकता है कि नहीं, पंचेंद्रिय में रखना है उसको। पंचेंद्र की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। देखो जैसे मनुष्यों में लगातार रहने के लिए मिथ्यात्व में जाने की कंडीशन थी, ऐसा या तिरंश में लगातार रहने के लिए, पंचेंद्र में रहने के लगातार के लिए मिथ्यात्व में उसको लगातार इमीजिएट भेजने की आवश्यकता नहीं थी। जाएगा ना, क्योंकि फिर बाद में उसको फिर पंचेंद्रिय में मिथ्या तो में इतना लंबा काल में सम्यक तो में इतना लंबा काल तो नहीं रहता, हजार सागर जितना
नहीं, सागर
रह सकता है। हाँ ले लो ना, उसमें क्या नहीं, पर दो छासठ सागर मुनि हुए मुनि हो सकता है, हो सकता है। हाँ उसकी कंडीशन ही नहीं ली उन्होंने, क्योंकि हजार सागर के लिए वो कुछ नहीं ना, फिर तो उसको मिथ्या तो नहीं जाना है लंबे काल। हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ केवल नीचे उतर कर पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, बस इतने, श्रेणी नहीं चढ़ी बीच में अंत। हाँ पश्चात अंतिम भव में मनुष्य में हुआ है, मनुष्य होने के बाद पश्चात हाँ दर्शन मुनि का क्षय कर, यानी समय तो प्राप्त किया, वो वेदक हुआ, दर्शन मुनि का क्षय किया, वो तो संसार के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, यानी दर्शन मुनि का क्षय करके भले ना चौथे पांचवें छठे सातवें कहीं पर भी चला, श्रेणी उसको चढ़ाना है लास्ट में, उपशम श्रेणी चढ़ाकर उतार कर फिर क्षपक श्रेणी चढ़ाना है। अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त अप्रमत्त न निकालो, उसके बदले प लिखो, प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तन सहस्रों को, सहस्रों का नहीं सहस्रों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत होकर। यहाँ तो क्षय किया ना उसने दर्शन मुनि का, ऊपर वो तो द्वितीय उपशम वाली बात वहां तो बता चुकी थी, यहाँ भी वो क्षयिक होगा पहले, वो ऊपर बताया था। हाँ दर्शन मुनि का उपशम कर वह लिखा था ना पांचवे पॉइंट पर, वहां तो द्वितीय उपशम ही कराना था, अभी यहाँ पहले क्षायिक कराया उसको, क्योंकि बाद में उसको मोक्ष भेजना है जल्दी में जल्दी। तो देखो उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत होकर अपूर्व करण उपशामक होगा हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात अनिवृत्तिकरण संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत उपशांत कषाय सूक्ष्म सांप्राय संयत अनिवृत्तिकरण संयत अपूर्वकरण संयत अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत और फिर अप्रमत्त संयत हुआ, मैंने वो श्रेणी उतरा, श्रेणी उतर कौन सी उपशम श्रेणी उतरकर उतरा, फिर हजारों बार छठा सातवा उसका मिलकर भी एक अंतर्मूर्त गिना उन्होंने, इसके ऊपर क्षपक श्रेणी संबंधी छह अंतर्मूर्त होते आठवा नौवा दसवा बारवा तेरवा चौदवा। इस वहां द्वितीय उपशम किया था क्योंकि क्षायिक करता तो उसी भाव में मोक्ष जाता ना, या अन्य तीसरे भाव में जाता। पंचेंद्रिय के अंतिम भाव में मनुष्य होकर पहले मैं समय को प्राप्त किया, शाही किया, उपशम श्रेणी चढ़ा, उतरा और इमीजिएट शाही शपक श्रेणी चढ़ी। इस प्रकार 30 अंतर्मुहूर्त और 8 वर्षों से कम पंचेंद्रिय स्थिति प्रमाण अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर है, अपूर्वकरण के लिए। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए, अनिवृत्तिकरण के लिए वो बाद में अंतर चालू हो जाएगा उसका, जल्दी समझ। विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः 28, 26 और 24 अंतर्मुहूर्तों से अधिक 8 वर्ष कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण अंतर होता है, क्योंकि अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण का एक अंतर्मुहूर्त गिनो ना, 8वें का एक, 9वें का एक, और बाद में जल्दी उसका अंतर समाप्त होगा। आगे आते हैं 77 पेज पर, हो गया ना यहाँ का। चारोक शपक ऊपर है, चदुन्नम खवा अजोगी केवली ओघम। चारोक शपक और अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। इन्हें नाना जी उनकी अपेक्षा कितना बताएंगे एक समय से लेकर, याद है कि भूल गए? 6 महीना शपक श्रेणी का। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, यहाँ बताए ना, ओके समान है, और उत्कर्ष से 6 मास अंतर है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। ऐसा क्यों कहा ब्रह्मा? शपक श्रेणी है, वो जाएगा तो वापस लौटने का सवाल नहीं है, गया ऊपर तो गया, अभी मोक्ष ही लेकर रहेगा। इस प्रकार ओग प्ररूपणा से कोई भेद नहीं है। सजोगी केवली ओगम, सयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यानी नाना जीवों का भी अंतर नहीं है, एक जीव का भी अंतर नहीं। नाना जीवों का अंतर नहीं इसलिए कि हमेशा कोई ना कोई वहां तो होगे होगे, क्योंकि नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। इस प्रकार ओग से कोई भेद नहीं है। देखो, जब निरंतर कहने की दो अपेक्षा है, नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर रहने वो गुणस्थान में हमेशा कोई ना कोई जीव पाया जाएगा, एक जीव की अपेक्षा निरंतर रहने वो गुणस्थान छोड़ने पर फिर गुणस्थान में कभी नहीं लौटेगा। अब पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तों की प्ररूपणा समाप्त हो। पंचेंद्रिय अपज्जतानम, बे इंद्रिय अपज्जतानम भंगो, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों का अंतर द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के समान है। क्या समानता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, यानी अन्य इंद्रियों वाले लब्धि अपर्याप्त होकर वापस इसमें आ गया, और उत्कर्ष से यानी मैक्सिमम अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर होता है, यानी वो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के बाद एक इंद्रिय में चला गया और वहाँ इतने लंबे काल तक वहीं घूम गया। इस प्रकार द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों से पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के अंतर में कोई भेद नहीं है। एदम इंद्रिय पड़ुच्छ अंतरम, यह इंद्रिय की अपेक्षा अंतर का, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, वो मार्गणा की अपेक्षा, मार्गणा जो है पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जो मार्गणा है उसकी अपेक्षा अंतर है। मार्गणा में गुणस्थानों का नहीं है। गुणम पड़ुच्छ उभयदो विनत्य अंतरम निरंतरम, गुणस्थान की अपेक्षा दोनों ही प्रकार से अंतर नहीं है, निरंतर है। दोनों ही प्रकार से यानी जघन्य उत्कृष्ट का भी भेद नहीं है और नाना जीव एक जीव की अपेक्षा भी भेद नहीं है। मिथ्या तो गुणस्थान एक ही गुणस्थान है हमेशा। ये दोनों ही सूत्र सुगम है, वो सुदीर्घ चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। इसके बाद अभी कौन सी मार्गणा आ गई? काय मार्गणा। काय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते हैं? षट का एक है ना, 5 स्थावर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, ये छह भेद हुए। वो उसके भेदों में चले जाएंगे तब, पहले वो काय मुख्य, मुख्य भेद चार है, फिर उसके और पेटा भेद करेंगे। देखो कायाणु वादेन पुढ़वी काय, आऊ काय, तेऊ काय, वाऊ काय, बादर सुहम, पज्जत अपज्जतानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी, नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतर। यानी इन्हीं सभी पर्यायों में हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी का एक, जल का एक, तेजस का एक, वायु का एक, इनके बादर और सूक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। अब एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन खुद्दा भवक ग्रहणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। यानी पृथ्वी का एक हुआ तो अन्य कोई कायिक वाला हुआ, वो लब्ध पर्याप्त क्षुद्र भव करके वापस इसमें जन्म लिया, क्योंकि इन पृथ्वी कायिक आदि जीवों का अविवक्षित, यानी जिसकी बात करते हैं उसको छोड़कर अन्य पर्याय में अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर सर्वस्तोक काल से, यानी अत्यंत लघु काल से पुनः विवक्षित काय में आए हुए जीवों के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जघन्य अंतर पाया जाता है। उक्कसेन अनंत कालम असंख्येज पोगल परियट्टम, उक्त पृथ्वी का एक आदि जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। ये स्थावर में से किसको छोड़ा है, इसमें से पृथ्वी काय का भी नहीं, सारो पांचों लिए क्या, वनस्पति काय को छोड़ा था। वनस्पति काय कहने वो निगोद भी आ गए उसके अंदर, है ना। तो ये वनस्पति काय छोड़कर अन्य चार कायिकों की बात है। अब अकेला जो पृथ्वी का एक जीव है उसको छोड़ो, और वो कभी अग्नि का एक हुआ, वायु का एक हुआ, कभी अन्य अन्य का एक हुआ, वनस्पति का एक भी हुआ, पृथ्वी का एक को छोड़कर बाकी सभी कायकों में घूमने का काल अनंत काल जो असंख्यात पुद्गल पर आवर्त है। अकेले अग्नि का एक में नहीं, सबका मिलकर पृथ्वी कायिकों की बात करना है। पृथ्वी कायिक का अंतर पृथ्वी कायिक में अन्य कायिकों में उत्पन्न हुआ तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल बिताने के बाद फिर दोबारा पृथ्वी कायिक में आया, ऐसा लेना उसका। वनस्पति कायिक में ऐसा नहीं कहेंगे हम, ये चार कायिकों की बात पहले यहाँ ली। देखो यहाँ पढ़ते ख्याल आएगा, अनंत कालात्मा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, क्योंकि विवक्षित काय से वनस्पति कायिकों में उत्पन्न होकर, वनस्पति कायिक लिया ना, अभी बाकी सबका मिलकर भी मत गिनो अकेले वनस्पति कायिक, क्योंकि एक एक इन चार में एक एक कायिक में रहने का काल तो असंख्यात लोक ही है। वनस्पति कायिक में ही रहने का इतना उत्कृष्ट काल, तो वनस्पति कायिकों में उत्पन्न होकर, ये होकर शब्द डालो, अंतर को प्राप्त हुआ जीव आवली के असंख्यात विभाग पुद्गल परिवर्तन वनस्पति काय की स्थिति तक। ये वनस्पति काय अकेले की स्थिति इतनी है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर और अविवक्षित शेष कायिक जीवों की भी स्थिति तक। शेष कायिकों की कितनी है, एक एक की असंख्यात लोक होगी, उसमें भी परिभ्रमण कर पश्चात, यानी उसमें त्रस काय भी छोड़ दो, जोड़ दो 2000 सागर की उसकी भी जोड़ दो, तो भी सब मिलकर असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहेंगे हम, क्योंकि उसके सामने वो बाकी काल तो कुछ नहीं है। पश्चात विवक्षित काय में जो जीव आता है उसके सूत्रोक्त तो उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। क्योंकि अपने को पृथ्वी में से अन्य कायिकों में भेजना है, वनस्पति काय में भी गया, अग्नि काय भी गया, वायु काय भी हुआ, जल काय भी हुआ, त्रस काय भी हुआ, सब मिलकर। ये ब्रह्मा पहले 78 पेज पर ऊपर सूत्र लिखे थे ना प्राकृत में, वो पहला सूत्र 130 नंबर का है, दूसरा 131 का है। अब आना पेज नंबर 79 पर, और वनस्पति काय निगोद जीव बादर सुहम पज्जत पज्जतानम केवचिरम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक कहने से सब भेद उसमें आ गए। फिर उसका एक भेद है निगोद वाला, तो निगोद जीव कहने से वो प्रत्येक वाले छोड़कर निगोद सारे साधारण वनस्पति सब आ गए। और फिर उसमें भी बादर निगोद कहने से सूक्ष्म छोड़कर अकेले बादर निगोद लिए, जब सूक्ष्म निगोद कहेंगे तो अन्य छोड़कर केवल सूक्ष्म निगोद लिया, इसलिए उसके एक एक टाइप बताए। तो वनस्पति कायिक निगोद जीव उनके बादर व सूक्ष्म तथा उन सब के पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इन पर्यायों में हमेशा ही कोई ना कोई जीव पाए जाएंगे, कोई ना कोई अनंत जीव होगे उसमें। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन खुद्दा भव गहणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित काय से अविवक्षित काय को जाकर अति लघु काल से पुनः विवक्षित काय में आए हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी लब्धि अपर्याप्तक में भी जो मिनिमम पॉसिबल जो क्षुद्र भव जिसको कहते हैं वो एक बिताकर वापस इसमें आ गया। अभी यहाँ सारों में तो मार्गणाओं का ही अंतर देखना है, केवल त्रसों में ही सारे गुणस्थान घटित हो गए, बाकी सारी जो एक इंद्रिय पांच स्थावर का है उसमें तो उस मार्गणा का ही अंतर बताएंगे। तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य हमने देख लिया। उक्त से न असंख्य जा लोगा, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है, क्योंकि वनस्पति का एक में अकेले में रहने का असंख्यात पुद्गल परावर्तन और अन्य केवल पृथ्वी का एक केवल अग्नि का एक सबका मिलकर भी अगर कहो तो सारा मिलकर भी असंख्यात लोक काल हो जाएगा। क्योंकि विवक्षित वनस्पति काय से पृथ्वी जल अग्नि और वायु का एक जीव में उत्पन्न होकर असंख्यात लोक मात्र काल तक उन्हीं में परिभ्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पति काय को आए हुए जीव के असंख्यात लोक प्रमाण अंतर पाया जाता है। आप कहेंगे त्रस को क्यों नहीं लिया, त्रस को भी ले लेना, कितने जुड़ेंगे 2000 सागर जुड़ेंगे, वो असंख्यात लोक के सामने कुछ नहीं है, वो उसी में इंक्लूड कर दो। अब आगे बादर वनस्पति काय पत्तेय शरीर पज्जत अपज्जतानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन खुद्दा भव गहणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। यह सूत्र भी सुगम ही है, बहुत बार देखा ना हमने। अब देखो उत्कृष्ट की बात यहाँ कैसे, किसका अंतर चल रहा है, बादर में भी प्रत्येक का चल, निगोद को नहीं लिया बादर, निगोद पहले ले चुके थे, निगोद का अंतर जब कहा था वो अन्य कायिकों में उत्पन्न करा था। तो उक्त से न अढ़ाई ज पोगल परियट्टम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये ढाई पुद्गल परिवर्तन निगोद में लगातार रहने का काल है। देखो वनस्पति कायिक में लगातार रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, यानी कभी निगोद कभी प्रत्येक कभी निगोद कभी प्रत्येक हुआ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और मात्र निगोद में रहने का काल 250 परिवर्तन बहुत कम है, पर अनंत है। आधा पुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत है, ये तो 250 पुद्गल परिवर्तन है, उसके सामने कम है। क्योंकि विवक्षित काय से निगोद जीवों में उत्पन्न हुए तथा उसमें 250 पुद्गल परिवर्तन और शेष कायिक जीवों में परिभ्रमण करने से अन्य कायिक में भी गया, फिर भी सब मिलकर भी 250 पुद्गल में आ गया था। उनकी स्थिति प्रमाण साधिक काल परिभ्रमण कर, यानी 250 पुद्गल और बाकी सब मिलाकर साधिक, बाकी सब यानी कौन से, वो असंख्यात लोक वाले, वो सब मिलकर साधिक परिभ्रमण कर विवक्षित काय में आए हुए जीव के शब्द पहले चाहिए, 250 जीव के पुद्गल परिवर्तन में आए हुए जीव के 250 पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण अंतर पाया जाता है। वो पहले वाला शब्द बाद में बात का पहले, ये समझ में आई ना बात, यानी हमें एक एक विशिष्ट पर्याय में रहने की उसकी वो स्थिति कितनी है उस पर्याय की, वो मालूम होना चाहिए। तो अन्य जो उसमें आते हैं तो अंतर कितना पड़ता है वो भी बात ख्याल में आती है। लगातार वनस्पति में रहने का काल जो है वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, लगातार केवल निगोद में रहने का काल है वो 250 पुद्गल परिवर्तन, और लगातार पृथ्वी काय के अग्नि काय एक एक काय में चार कायिकों में रहने का लगातार काल है वो तो असंख्यात लोक, चारों का मिलकर भी, क्योंकि चार बार असंख्यात लोक मिलाएंगे तो असंख्यात लोक ही कहेंगे उसको, उसमें त्रस को मिलाओ तो भी असंख्यात लोक ही होगा। तो जब हम अंतर को देखते हैं तो अन्य कायिकों का काल कितना है उसको हमको मालूम होना चाहिए। अब तसकाय पज्जते येषु मिच्छादिट्ठि ओघम, त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर ओघ के समान है। देखो अभी त्रसकायिकों का अंतर नहीं कहा, त्रसकायिकों का अंतर कहते तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहना पड़ता क्योंकि एक गया हुआ जीव मानना। अब त्रसकायिक कायम रखना, त्रसकायिक से अन्य कायिक में नहीं भेजना, उसमें गुणस्थानों का अंतर देखना, यानी त्रस में रहने का काल जो है उसकी शुरुआत में एक बार यानी समय को प्राप्त करके उसमें आ गया है और फिर लास्ट में से मिथ्यात्व का अंतर रहने क्या, वो समय दृष्टि रखना है। हाँ 266 साल जो हमने इसमें भी देखा था, ओघ में भी देखा था। देखो ओघ के समान बताए ना, मिथ्या दृष्टि जीवन का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है निरंतर, एक जीव की अपेक्षा जगण्य से अंतर मुहूर्त अंतर है, क्योंकि अन्य गुणस्थान को गया और वापस आया, चौथे में जाके आया पांचवे में जाके आया जो कुछ, और उत्कर्ष से देशों न 266 सागरों को अंतर है। ये मिथ्यात्व का अंतर देख रहे, मिथ्यात्व का काल अगर गिनना है तो त्रस की स्थिति गिननी पड़ेगी। चौथे का अंतर देखते समय पहले बार एक बार किया और लास्ट भाव में किया वो तो 2000 सागर कुछ अधिक आ जाएगा। ये हम मिथ्यात्व का अंतर देख, त्रस यानी द्वंद्रीय तीन्द्रीय चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रिय सब मिलकर, अकेले पंचेंद्रिय में 1000 सागर प्लस पृथक्त्व कोटि लिया था, पृथक्त्व पूर्व कोटि, अब 2000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक्त्व लेंगे। यहाँ मिथ्यात्व का अंतर देख रहे हैं, उसको सम्यक्त्व में रखना है, सम्यक्त्व नहीं वो चौथा पांचवा छठा सातवा अभी कुछ भी हो, मिथ्या तो में नहीं आया बस इतना, तीसरे में भी जा सकता है बीच में एक बार। तो उत्कर्ष से देशों ने 266 सागरों पर अंतर है, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीवों के ओघ अंतर से इसके अंतर में कोई भेद नहीं है। अब शासन सम्मा दिच्छिन्नम अंतरम, सम्मा मिथ्या दिच्छिन्नम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च ओघम, त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त साधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा ओग के समान अंतर है। कितना था एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग? 81 पृष्ठ पर आते हैं। क्योंकि जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण अंतर है। इस प्रकार ओग से इनके अंतर में कोई भेद नहीं है। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन पलिदोमस्त असंख्य यदि भागो, ये सासादन के लिए अंतो मुहूर्तम और डबल से चाहिए, ये तीसरे गुणस्थान के लिए। उक्त जीवों का यानी सासादन का और समय मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा ये जघन्य अंतर करो, उत्कृष्ट नहीं चाहिए, जघन्य। उत्कृष्ट शब्द निकाल कर जघन्य करो। जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम के असंख्यात विभाग और अंतर्मूल प्रमाण है। ये तो हम हर गति में हर जगह देखते आए थे। यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देखना है तो कैसे करना? पंचेंद्रिय अभी त्रस की स्थिति रखना, त्रस की शुरुआत में एक बार उसको कराना, सासाधन समय को प्राप्त करके सासाधन में लाना, फिर मिथ्यात्व में उसको भटकाना और फिर लास्ट भाव में फिर लाना। तो उपकसेन सागरों में सहस्राणी पूर्व कोड़ी पुदत्तेन भियाणी वे सागरों में सहस्राणी देशुनानी। यानी कुछ कम कितना करना, एक तो त्रस लिए और एक त्रस पर्याप्त लिए, दोनों की स्थिति अलग अलग ही नहीं, उसको बताएंगे अभी हिंदी में। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमशः, क्रमशः कहने से त्रसकायिक, त्रसकायिक कहने से पर्याप्त, पर्याप्त सब आ गए। पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागरोपम और कुछ कम 2000 सागरोपम, ये त्रसकायिक पर्याप्त उनकी है। कुछ कम इसलिए कहा कि उसमें उत्पन्न होने के बाद वो समय तो प्राप्त करेगा, फिर सासाधन में आएगा, वो सब कंडीशन लगा ली, इसलिए कुछ कम कर दिया। आप कहेंगे ऊपर पूर्वकोटि पृथक में कुछ कम क्यों नहीं कहा? वहां भी समझ के समझ लेना, उसको भी कुछ कम करेंगे तो भी उसको पूर्वकोटि पृथक ही कहेंगे, है ना? इसलिए यहाँ एग्जैक्ट 2000 सागर था इसलिए कुछ कम कह दिया। जैसे एकेंद्रिय की स्थिति में स्थित कोई जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, इन्हें एकेंद्रियों से उसके त्रस में लाया, जैसे अभी अर्लीस्ट समय को प्राप्त कराना है, लंबे काल से आया है तो प्रथम उपशम तो असंगी में लेकर देव में भेजेंगे। असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ ये भी समूर्छिन लेना है। वो भी पर्याप्त होगा, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वानवेंतर देवों में आयु को बांध कर विश्राम ले, मरा। देखो क्या क्या बात हुई। असंगी में कैसे किया, उसके पहले पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम लेता है, फिर विशुद्धि बढ़ गई, फिर भवन देवों की आयु बांधी उसने, उसके बाद आयु बांधने के बाद अंतर्मूर्त और बीत जाता है और बाद में मरता है। भवनवासी या व्यानवंतर देवों में उत्पन्न हुआ, वहां छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, सासादन गुणस्थान को गया, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी सासादन में से मिथ्यात्व में पहुंचा तो सासादन का अंतर शुरू हो गया, और त्रस जीवों की स्थिति प्रमाण परिवर्तन करके अंत में सासादन गुणस्थान को गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। तत्पश्चात उस सासादन गुणस्थान में स्थावर काय के योग्य आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रह कर मरा और स्थावर कायिकों में उत्पन्न हुआ। वैसे ही समय वैसे ही है, केवल इनकी स्थिति ज्यादा है। उसी बात पंचमी में ऐसा ही लिया था हमने, लेकिन स्थावर कायिक में उसको भी उत्पन्न कराया था। और यहाँ देखो, सासाधन के पहले समय में इसलिए नहीं मरा कि शुरुआत में मरने वाला देव हो जाता है, इसलिए उसके यथायोग्य आवली का असंख्यात भाग बीत गया तब ये एक इंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है। एक इंद्रिय स्थावर का अर्थ होता है पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का, ये चारों पांचों एक इंद्रिय उसको कहेंगे मिलकर स्थावर। पूरे संसार के दो भेद, त्रस और स्थावर। त्रस में द्विंद्रिय आदि और बाकी एक इंद्रिय सब जो है वो स्थावर। पूछना ऐसा कोई प्रश्न? आगे बढ़े ना, ये समझ में आ रही के बाद बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ, 82 नंबर के पृष्ठ पर 82। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग और 9 अंतर्मूर्तों से कम त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त उनकी स्थिति प्रमाण अंतर होता है। ये कुछ कम है ना, वो दोनों की जो अपनी अपनी स्थिति उसमें इतना कम कर देना। अब त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर कहते हैं। अभी इसको भी वो इतने लंबे काल से आया है ना एक इंद्रिय में बिता कर, इसको भी पहले प्रथम उपशम करके फिर तीसरे में भेजना पड़ेगा, फिर तीसरे का अंतर्मुत रहकर फिर नीचे आया तब अंतर चालू होगा। अब देखते हैं, एक इंद्रिय जीवों की स्थिति को प्राप्त कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ। अभी उसको पहले प्रथम उपचार करना है तो अगर गर्भज में ही डायरेक्ट भेजते तीर्यंश में या मनुष्य में तो उसको अधिक टाइम लगता है, इसलिए देव में जाने के लिए असंगी का अंतर्मूर्त प्रमाण भोग करके देव में गया। तो 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वानवेंतर देवों में आयु को बांध कर विश्राम ले, पूर्वोक्त देव में उत्पन्न है, मरकर देव में उत्पन्न हुआ वो असंगी, मरकर देव में उत्पन्न हुआ, फिर देव है वो 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, पश्चात सम्यक मिथ्यात्व को गया, पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। 10 अंतर्मुख के बाद उसको मिथ्यात्व में गया तो मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया और अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त की स्थिति के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पीछे मिथ्यात्व को जाकर एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, यानी बीच में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वो सब उसमें आ गया, अंतर में आ गया। आयु भी पहले ही बांधी थी, वो सब समझ लेना। इस प्रकार इन 12 अंतर्मूर्तों से कम त्रस और त्रस पर्याप्तकों की स्थिति ही उक्त दोनों प्रकार के सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। तीसरे चौथे के लिए मिथ्यात्व में लाकर उसको भेज दें एक इंद्रिय में, और बाकी पांचवे छठे सातवें के लिए ऊपर भेजेंगे शायद मुख्य। असंजय वहां समय मिथ्यात्व का एक अंतर्मुख गिनना पड़ेगा ना। नहीं, उसमें क्या है, समय मिथ्यात्व को प्राप्त होते ही अंतर तो मिल गया, उसके बाद फिर मिथ्यात्व में गया, फिर एक इंद्रिय में। सासाधन में से सासाधन में से एक इंद्रिय में जाते, यहाँ तीसरे गुणस्थान में मर नहीं सकता है, और तीसरे गुणस्थान से मिथ्यात्व में आने पर इमीडिएट मर नहीं सकता, इसलिए तीसरे का अंतर्मूर्त पहले का अंतर्मूर्त फिर मरा। दो अंतर्मुहूर्त बढ़ गए यहाँ पर। नहीं 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 पहले दस गिने थे ना, यहाँ नौ ही गिने थे। उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त में से ही सासाधन को गया था, और उपशम सम्यक्त्व का जो अंतर्मुहूर्त है उसका पूरे होते ही सासाधन में से मिथ्यात्व हो गया। यानी उसमें अंतर्मुहूर्त कहाँ बढ़ा, वहाँ अंतर्मुहूर्त बढ़ ही नहीं गया। हाँ वो सासाधन के पश्चात हमने अंतर चालू किया गिनना। अपन सम्यक मिथ्यात्व का एक अंतर्मुहूर्त एक सौ गिना ना, वो सम कंप्लीट होने के बाद अंतर चालू हो गया। सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होते ही अंतर नहीं चालू हो गया। अंतर कब कहेंगे, वो गुणस्थान छूटेगा तब कहेंगे कि प्राप्त होने पर
कर।
देखो देखो दसवा कैसे लेते हैं, सासाधन के लिए अलग से टाइम कहाँ लिया उसने। सासाधन के बाद जब मिथ्यात्व में जाएगा तो जो उपशम का ऑलरेडी अंतर्मुहूर्त था उपशम के काल में ही वो सासाधन को आया था, यानी उसका एक्स्ट्रा नहीं काल गया उसको। सासाधन का काल एक्स्ट्रा नहीं गिनना है, उपशम सम्यक्त्व का काल ही सासाधन का काल है, उसके अंदर ही। हाँ अंतर्मुहूर्त बढ़ गया उसका, बाद में उसका अंतर चालू वो बढ़ा। असंजत संवादिति पौड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त संयत तक त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है। यह सूत्र सुगम है, ये निरंतर गुणस्थान है ना, उसमें हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। एक जीवम पड़ोच जहन्य न अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। यह सूत्र भी सुगम है, जो हमने गुणस्थानों में देखा था। अन्य गुणस्थान को जाकर फिर इसमें लौट कर आता है तो इनका अंतर हो जाता है। केवल सातवें के अंतर के लिए उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे लाया था। उपकस्तेन सागरों में सहस्राणी पूर्व कोड़ी पुधत्तेन भैयाणी वे सागरों में सहस्राणी देशुनानी। उक्त असंहितादि चारों गुणस्थानवर्ती त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथत्व से अधिक दो सहस्र सागरोपम और कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है। इनमें से पहले त्रस और त्रस पर्याप्त असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। जो हमने सासाधन के लिए देखा, अब यहाँ उसको उपशम समय को प्राप्त करा कि उसमें से नीचे लाना। एकेंद्रिय स्थिति को प्राप्त तो कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छम पर्याप्त जीवों में उत्पन्न हुआ, यह स्पष्ट शब्द लिख लिया। पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासिया वान्यंतर देवों में आयु को बांध कर फिर विश्राम ले, काल कर यानी मर कर भवनवासिया वान्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। अब उस देव ने छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, फिर विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। हाँ बोलो। उसका है एक अंतर्मुहूर्त तक अन्य कुछ कार्य नहीं होता। पर्याप्ति पूरी होने के बाद विशुद्ध बढ़ने का जो सम्यक्त होने का कार्य उस काल में नहीं होता, इसको विश्राम ले। आयु बंध के बाद भी विश्राम ले ऐसा अर्थ होता है कि वहाँ कुछ अन्य कार्य नहीं होता, उसके पहले वो मर नहीं सकता, इसलिए विश्राम लेते। तो देखो उपशम सम्यक्त को तो प्राप्त हुआ, अभी सासाधन के लिए पूरा काल बीतने पर वो नीचे आएगा। अभी उपशम समय से छह अवली पहले वो सासाधन में आया तो चौथे का अंतर चालू हो गया है ना। उपशम सम्यक्त के काल में छह अवली अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को गया और अंतर को प्राप्त हो। मिथ्यात्व में जाकर अपनी स्थिति प्रमाण, आपने ने अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, ये परिभ्रमण एक निकाल दो, आगे परिभ्रमण लिख लिया है, और कर और उसके बीच में अंतर रखना, परिभ्रमण कर, अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, यानी चौथे गुणस्थान मान लेते प्राप्त होते उसका अंतर लब्ध हो गया। पुनः साधन गुणस्थान को जाकर वहां अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहकर एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, यानी वो मिथ्या तो अवस्था में उसने आयु बांधी थी, एकेंद्रिय में गया वो। इस प्रकार इन दस अंतर्मूर्तों से कम त्रस और त्रस पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं के असंयत समयदृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर है। ये जो हमने पंचेंद्रियों में देखा वैसे यहाँ पर देखा है, केवल इनकी स्थिति यहाँ गिननी अलग से। त्रस और त्रस अभी कहाँ गए, हाँ त्रस और त्रस पर्याप्त संहिता संहित का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। चारों गुणस्थान उन्होंने सूत्र में तो चारों गुणस्थान वर्ती बताए थे, अब यहाँ एक एक खोलकर बता रहे हैं। पांचवे गुणस्थान की विशेषता क्या है, चौथे वाले को सासादन में भेजकर एकेंद्रिय में भेजा था, अब पांचवे वाले को क्या ऊपर भेज देना, यानी पहले चौथे प्राप्त कराना, क्षायिक कराना, फिर पांचवे में लाना, और बाद में उसको मुनि बनाकर श्रेणी चढ़ाना, शपथ श्रेणी। अब पढ़ेंगे एकेंद्रिय जीवों की स्थिति में स्थित कोई एक जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, ये तीर्यंच गर्भज में उत्पन्न कराना पड़ेगा, क्योंकि पांचवा गुणस्थान में लाना है ना। शंका, उक्त जीव को असंगी समूर्छिन पर्याप्तकों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, नहीं क्योंकि उनमें संयमासंयम के ग्रहण करने का अभाव है। कोई कहेंगे तो संगी समूर्छिन में उत्पन्न कराना था, उसमें प्रथम उपशम का अभाव, क्योंकि एकेंद्रियों में लंबी स्थिति बिता कराया है, ख्याल में आई ना। हाँ प्रथम उपशम शादी शादी यानी एकेंद्रिय में इतना लंबा काल बिता के आया है ना, वो अनंत काल बिता के आया। हाँ सोक्षम होने के लिए तीन की सत्ता चाहिए, शादी भले होगा पर एक मिथ्यात्व की सत्ता होगी, तो उसके साथ तो उसको वेद समेत को कैसे प्राप्त होगा, वेदक होता है और वो भी शादी वाला 28 की सत्ता वाले को होगा, एकेंद्रिय में लंबी स्थिति बिता कर आया है, इसलिए वो पंचेंद्रिय गर्भज में ही उत्पन्न हुआ है। पेज नंबर 84। असंगी इसलिए नहीं लिया, असंगी को हम देव में भेजते और चौथा गुणस्थान प्राप्त कराते हैं, यहाँ पांचवा गुणस्थान प्राप्त कराना। यहाँ पूछा न शंका, उक्त जीव को असंगी समूर्छिम पर्याप्तकों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, ऐसे तो असंगी समूर्छिम पर्याप्तों में समय तो होता ही नहीं, परंतु उसको भवनवासी ने भेजा था, यानी वहां भेजकर भवनवासी क्यों नहीं बनाया, तो भवनवासियों में वहां पांचवा गुणस्थान नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट संगी में ही लेना है, और संगी में लेना है तो प्रथम उपशम कराना है। नहीं क्योंकि उनमें सेमा सेम ग्रहण करने का अभाव, समझ में आई ना बात, भवनवासी में पांचवा नहीं होता है और समूर्छन पंचेंद्रियों में संगी में प्रथम ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एकेंद्रिय में लंबा काल बिता के आया है।
एकेंद्रिय में लंबा
हाँ प्रथम उपशम प्राप्त करेगा।
हाँ
वही तो प्रथम उपशम में सब उसमें देशना लगी हुई सब आ गई उसके अंदर। अभी इतना लंबा काल आया ना वही तो। हाँ भवनवासी में चौथा हो सकता है और समूचन पंचेंद्रिय संगी में प्रथम उपशम नहीं हो सकता। इसलिए वो गर्भज लिया तीर्यंश गर्भज लिया। अभी वो समाधान की लाइन पढ़ रहे क्योंकि उनमें सहमा सहम के ग्रहण करने का अभाव है। पुनः उत्पन्न होने के पश्चात तीन पक्ष तीन दिन और अंतर्मूल से प्रथमोपशम सम्यक्त्व और सहमा सहम को एक साथ प्राप्त हुआ। डेढ़ महीना 84 पेज पर आए। और देखो ना कैसे गर्भकाल भी 48 तीन पक्ष समझो गर्भकाल ले लिया तीन दिन और अंतर्मुहूर्त में प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त किया। पांचवा गुण स्थान हुआ। प्रथम ऑप्शन समय तो के काल में छह अवली अवशेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को गया यानी पांचवे में से दूसरे में गया और अंतर को प्राप्त हो मिथ्यात्व में जाकर अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंतिम त्रस भाव में सम्यक्त्व को ग्रहण कर। अभी वो मनुष्य का करना अंतिम भाव दर्शन मुनि का क्षय कर अंतर्मूल प्रमाण संसार के अवशिष्ट रहने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। मैंने पहले चौथा प्राप्त किया था क्षायिक हुआ था फिर लास्ट में जाके पांचवा गुण स्थान में आया इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। फिर पांचवे में अंतर्मूत रहकर भी सातवें में चला जाएगा पश्चात अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत हुआ अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें शपक श्रेणी संबंधी ऊपर के छह अंतर्मूत और मिलाए इस प्रकार 12 अंतर्मूर्तों से अधिक 48 दिनों से कम त्रस और त्रस पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति ही उन संहिता संयत जीवों की उत्कृष्ट उनका उत्कृष्ट अंतर है। यानी देखो केवल सम्यक तो प्राप्त करके उसकी त्रस स्थिति पूरी समझ हो जाएगा तो मिथ्यात्व में तो जा सकता है। केवल ऊपर के गुणस्थानों में जाकर भी नीचे आकर वो बिना अबद्धायु हो वो भी जा सकता है परंतु यहाँ तो उनको अंतर बढ़ाना है इसलिए हमने उसको मोक्ष भेजा। ऐसा नहीं कि त्रस के अंतिम भाव में उसको अगर पांचवा गुणस्थान प्राप्त होगा तो वो मोक्ष जाएगा ये बात नहीं है। ये अंतर बढ़ाने के लिए उसको मोक्ष जाने की वाली बात बता उसका अर्थ है ना। पहले ऐसा हम कहते थे कि त्रस की उत्कृष्ट स्थिति है अगर समय को नहीं प्राप्त होगा तो त्रस का एक में जाए ये स्थावर में चला जाएगा। समय तो प्राप्त होगा ये उसके लिए नहीं है। त्रस की स्थिति पूरी हुई है तो समय तो में से गिर कर जाएगा ही जाएगा मिथ्यात्व में। केवल समय तो प्राप्त करना उसके लिए काफी नहीं त्रस स्थिति में से उगरने के लिए। त्रस स्थिति आकर पूरी हुई है और समय तो अगर लाख लाख में प्राप्त किया है और अगर उस भाव में मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता है तो एक इंद्रिय में जाएगा ही जाएगा। द्वितीय ऑप्शन तो उसको श्रेणी के लिए होता है दूसरे बार होता है तो द्वितीय ऑप्शन नहीं कहते। देखो देखो कितने भी बार हो जाए जब प्रथम ऑप्शन तो प्रथम ऑप्शन ही कहते हैं वो अनेक बार भी हो सकता है उसमें। पल्ले के असंख्यात भाग बार हो सकता है, इतने बार होकर छूट सकता है, प्रथम ऑप्शन। वेदक तो और कितने बार होगा, त्रस की स्थिति पूरी होती है तो एक इंद्रिय में जाएगा। एक वो भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो लंबे काल तक अन्य स्थिति करता है ना, तो उसके बाद उसकी नीचे रहने की भी लंबी स्थिति हो जाती है। ऐसा अगर आप त्रसों की उत्कृष्ट स्थिति मत लो तो एकाध भव करके भी वापस आ सकता है, क्योंकि हमने लिया तो है ना, त्रस का जघन्य अंतर एक लब्धि अपर्याप्त का भव लिया ही है। जा सकता है, परंतु उसने कितनी लंबी, यहाँ कितना काल बिताया कहाँ पता है, यानी उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहे हैं। अब यही रुकेंगे हम, संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर देखा हमने। हाँ तीन पक्ष तीन दिन, दो बार आई बात, अभी तो वो दो महीने का याद था, वो कुकुट मरकट वगैरह था। हाँ वो भूभूमि के लिए आया था ना खास, कुकुट मरकट आदि में सुनो तो कुछ अंतर मुहूर्त में, कुछ मुहूर्तों में। हाँ ये संहिता संयत के लिए खास बात आई थी, उसके लिए भी आई थी ना पहले, संहिता संयत के लिए आई थी ना, संहिता संयत के लिए बात आई थी,
क्योंकि
हाँ पंचेंद्रिय की, हाँ ये समूर्छन की बात, वहाँ तीर्जन
उत्पन्न करके वगैरह वगैरह तीन दिन वगैरह बताकर,
हाँ वो तिरियंच गर्भज लिया, गर्भज तिरियंच वो लास्ट भाव में, ये पहले भाव में त्रस का पहला भाव उन्होंने तिरियंच का लिया, और अंतिम भाव मनुष्य का लिया, और फिर तपश्रेणी चढ़ाई। जावाणी के ज्ञान से